मुख्य समाचारों में प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीजी ने अपनी पहली राष्ट्रीय कैबिनेट बैठक में कोविड फंडिंग व्यवस्था का विस्तार किया। एसपीएस अध्यक्ष और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया प्रीमियर रूस द्वारा ऑस्ट्रेलियन लोगों पर लगाए गए प्रतिबंधों में शामिल और भारत में अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के लिए देशव्यापी विरोध। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। राज्य और क्षेत्र के नेताओं ने सार्वजनिक अस्पतालों के लिए कोविड-19 फंडिंग व्यवस्था के विस्तार का स्वागत किया है। महामारी से संबंधित खर्चों को कॉमनवेल्थ और राज्यों और टेरिटरीज के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता है, लेकिन यह समझौता सितंबर में समाप्त होने वाला था। प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीजी ने राष्ट्रीय मंत्रिमंडल से कहा कि समझौते को साल के अंत तक बढ़ाया जाएगा। न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर डोमिनिक पेरोटे का कहना है कि वो खुश हैं कि एक विस्तार हुआ है।
I think it's a great start. I mean, this is something that we've been discussing at National Cabinet for some time. So to have the first meeting today and for this matter to be resolved to some degree to be extended to December, I think is incredibly welcome and was supported by every state premier and chief minister.
Pradhan Mantri Anthony Albanese ka kehna hai ki rajya aur territories ke neta sansad mein samvidhanik roop se nihit swadeshi awaz ke liye ek janmat sangrah ko aage badhane ke liye pratibaddh hain. प्रधानमंत्री ने आज अपनी पहली राष्ट्रीय कैबिनेट बैठक आयोजित की, जहां स्वास्थ्य, वित्त पोषण, ऊर्जा संकट और तेजी से लक्षित प्रवासन एजेंडे में थे। श्री अल्बनीजी का कहना है कि उलूरू स्टेटमेंट में किए गए प्रस्ताव की सफलता को सुरक्षित करने के लिए दिल से पूर्ण समर्थन की आवश्यकता है। उनका कहना है कि अगर सभी मुद्दों का समाधान नहीं किया गया तो सुधारों के बंद होने का खतरा हो सकता है।
It is something that's got to be progressed this year and this term, and that is why the support of the states and territories, of course, constitutional change requires four out of every six states, four out of the six states with a majority across the country in order to be improved, and that will be an important reform and an important moment. For the nation moving forward.
न्यू साउथ वेल्स के ट्रेजरर और ऊर्जा मंत्री मैट कीन का कहना है कि उन्हें राज्य की बिजली आपूर्ति को संरक्षित करने के लिए अस्थायी आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। इन शक्तियों से श्री कीन कोयला उत्पादकों को बिजली जनरेटर्स के लिए कोयले की आपूर्ति बढ़ाने का आदेश देने का अधिकार पाते हैं। ऊर्जा मंत्री मैट कीन की ये शक्तियां एक महीने के लिए लागू होती हैं अगर इससे पहले ये खारिज नहीं की जाती। श्री कीन का कहना है कि वो न्यू साउथ वेल्स की गवर्नर से मिले और ऑस्ट्रेलियन ऊर्जा बाजार संचालक की सलाह के बाद उनसे इन शक्तियों अधिकारों की बात की।
We're just taking a proactive step that will support us if there's issues with fuel security, if there's issues with logistics in getting fuel to the side of the generators. We want to make sure that we've got everything in our toolkit to keep the system running and make sure we get through this period.
SPS board ke adhyaksh George Savvidis 100 se adhik Australian logon mein hain jin par Rusi sarkar dwara pratibandh lagaya gaya hai. रूस ने 121 ऑस्ट्रेलियन लोगों की सूची प्रकाशित की है जिन्हें अनिश्चित काल के लिए रूस में प्रवेश करने से रोका जाएगा। इसमें श्री सेवाइडस, एबीसी चेयर ईटा बट्रोस, शिक्षाविद, राजनेता, व्यवसायिक लोग और पत्रकार शामिल हैं। एक बयान में श्री वाइडस ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के इन्वेजन की कवरेज पर एसपीएस बोर्ड और प्रबंधन सही है और गर्वित है। उनका कहना है कि एसपीएस वर्ल्ड न्यूज और एसपीएस रूसी और यूक्रेनी भाषा सेवाओं सहित सभी एसपीएस सेवाओं में एसपीएस ने ऑस्ट्रेलिया में दर्शकों को इस संघर्ष की मजबूत और निष्पक्ष कवरेज प्रदान की है। श्री सेवाइडस का कहना है कि ये हमारे लोकतंत्र के भीतर एक स्वतंत्र प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका का स्पष्ट प्रदर्शन है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर पीटर मेलानोस्कस इस सूची में होने पर परेशान नहीं है।
Very quickly upon coming to government, my government has sought to do a number of things to send a very clear message that the people of South Australia stand firmly with Ukraine, as does every state and territory. And I'm just grateful for the fact that Vladimir Putin took notice. My heritage, Malinauskas, is a Lithuanian last name, and my family knows all too well the human tragedy that can occur in the face of unacceptable Russian aggression. And I'm very proud of the fact that my government's played a leadership role, and I look forward to doing that in the future.
New South Wales Law Society COVID-19 court ke upayon ko banaye rakhne ke liye keh rahi hai, kyunki adhik karyalayon ne home culture se kaam ko apnaya hai. Attorney General Mark Dreyfus ko ek sarvekshan ka pariram prastut kiya gaya hai, jo darshata hai ki 90% se adhik solicitors न्याय तक पहुंच में सुधार के लिए घर से काम करने के लचीलेपन को बनाए रखने के लिए कह रहे हैं. सोसाइटी अध्यक्ष जोएन वैन डर प्लाट का कहना है कि सोसाइटी इस साल के बजट में प्रासंगिक घोषणाओं की उम्मीद कर रही है.
There needs to be more investment in upgrading tech in our state's courts and in our custodial institutions. And I think, you know, next Tuesday's New South Wales budget is the perfect opportunity to do just that. Doing simple proceedings online allows a lawyer, you know, allows lawyers to concentrate on providing best legal advice and advocacy, and it saves, you know, the community and the justice system money.
राज्य के मौजूदा बाढ़ वसूली कार्यक्रमों के लिए न्यू साउथ वेल्स में 50,000 और 1.5 मिलियन डॉलर के बीच अनुदान की पेशकश की जा रही है. 30 मिलियन डॉलर का अनुदान कार्यक्रम आपदा निवारण उपायों पर केंद्रित है और ये कॉमनवेल्थ के साथ एक संयुक्त पहल है. रेजिलियंस न्यू साउथ वेल्स में डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड ग्रांट्स बार्नी स्मिथ फंड में रुचि रखने वाले संगठनों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं. 2 सप्ताह में, यानी 1 जुलाई इसकी आखिरी तारीख है. श्री स्मिथ ने SBS न्यूज को बताया कि अनुदान का उद्देश्य आपदा वसूली गतिविधियों को पूरा करना है.
The fund is not intended to replace the recovery initiatives that are ongoing across the state in response to the February-March floods in the Northern Rivers and Western Sydney and other locations. But it is very important that, you know, as the costs of natural disasters is increasing, that we ensure that we are also investing upstream in the prevention of future disasters.
और भारत में अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के लिए देशव्यापी विरोध के बीच आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 कर दी है. सरकार ने एक विज्ञप्ति में कहा कि ये निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि पिछले 2 वर्षों में कोई भर्ती नहीं हुई है. सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को लेकर गुरुवार को यूपी बिहार समेत देश के कई राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हुए. कई जगहों पर ट्रेनों को आग लगा दी गई. इस बीच सरकार ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि नया मॉडल न केवल सशस्त्र बलों में नई क्षमता पैदा करेगा बल्कि ये युवाओं के लिए निजी क्षेत्र के रास्ते भी खोलेगा. कारगिल युद्ध के दौरान सेना प्रमुख जनरल बीपी मलिक ने अग्निपथ योजना का समर्थन किया और कहा कि सशस्त्र बल एक स्वयंसेवी बल है, ये एक कल्याणकारी संगठन नहीं है और इसमें देश के लिए लड़ने वाले सबसे अच्छे लोग होने चाहिए जो देश की रक्षा कर सकें. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने गुंडागर्दी की, ट्रेनों और बसों को जलाया, ये वो लोग नहीं हैं जिन्हें हम सशस्त्र बलों में रखना चाहेंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि उनमें से कुछ लोग आयु सीमा से बाहर हो चुके होंगे, वो अग्निपथ योजना के लिए पात्र नहीं होंगे, इसलिए उनकी चिंता और हताशा मैं समझ सकता हूँ. जनरल मलिक ने संकेत दिया कि सेना अभ्यर्थियों को सरकार ने पुलिस और अर्धसैनिक बलों में लेटरल एंट्री का आश्वासन दिया है, हालांकि नौकरी की गारंटी नहीं दी जा सकती है. और अपात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, ऑस्ट्रेलिया का 1 डॉलर अमेरिका के 70 सेंट और भारत के 54 रुपए 76 पैसे के बराबर है. खेल समाचारों में, साइकिलिंग में विमेंस टूर डाउन अंडर को 2023 में प्रो लेवल महिला टूर रैंक तक बढ़ा दिया गया है. मैनेजमेंट कमेटी की बैठक के दौरान इस घोषणा की पुष्टि की गई थी. महिला साइकिलिंग टीम को अब पुरुषों के बराबर का दर्जा और पुरस्कार राशि मिलेगी. 3 चरणों वाली महिलाओं की दौड़ दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में 2023 में 15 से 17 जनवरी तक होगी. और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी शनिवार को पर्थ में बौछारें, अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री। एडिलेड में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 18 डिग्री, न्यूनतम 9 डिग्री। मेलबर्न में बौछारों की संभावना, अधिकतम तापमान 15 डिग्री, न्यूनतम 8 डिग्री। होबार्ट में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 14 डिग्री, न्यूनतम 7 डिग्री। कैनबरा में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 15 डिग्री, न्यूनतम 1 डिग्री। सिडनी में एक दो बौछारें, अधिकतम तापमान 18 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री। ब्रिस्बेन में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 22 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री। और डार्विन में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।